एबीसी इंडिया बोल 22 जून दिन शनिवार, सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। बिहार में दिमागी बुखार की वजह से 150 से अधिक बच्चों की मौत, क्या यही है 21वीं सदी का भारत? आजादी के 72 साल बाद भी भारत में बच्चे क्यों हैं कुपोषण का शिकार? कहां नाकाम रही है सरकार? यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811 7001 पर। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह और बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबे, लेकिन थोड़ा ठहरेंगे और सुनेंगे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप राय से। खुफिया निगरानी करने वाले अमरीकी ड्रोन को मार गिराए जाने के बाद कुछ और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने भी ईरान के नियंत्रण वाली वायु सीमा में अपने विमानों की उड़ानों पर रोक लगा दी है। ओमान की खाड़ी और जल डमरू मध्य के ऊपर से अपनी उड़ान रोकने वाली कंपनियों में नया नाम एतिहाद एयरवेज का है। हालांकि ईरान लगातार कह रहा है कि उसकी वायु सीमा एयरलाइंस के संचालन के लिए सुरक्षित है। इस बीच तनाव को कम करने के लिए ब्रिटेन के विदेश मंत्री एंड्रयू मॉरिसन रविवार को ईरान के दौरे पर जा रहे हैं। शनिवार को अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर जवाबी हमला करने के फैसले को अंतिम क्षणों में उन्होंने रद्द कर दिया था। ट्रंप के सहयोगी फ्रेड फ्लिट्स का कहना है कि ट्रंप के सामने जवाबी कार्रवाई रोकने के कई कारण थे।
The president is struggling with two factors. He was elected as a president and said that he would try to keep
राष्ट्रपति के सामने दो बातें थीं। जब वो राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने वादा किया था कि अमेरिका को वो नए युद्ध में नहीं झोंकेंगे और युद्ध खत्म करेंगे। दूसरी तरफ ईरान के सामने आक्रामक रुख से निपटने के लिए सैन्य ताकत इस्तेमाल करने का दबाव भी उन पर था। वो इन दो कारकों के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और तब तक सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक उनके पास सही कारण न हो। ये थे फ्रेड फ्लिट्स के शब्द। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक महिला के यौन उत्पीड़न के आरोपों का खंडन किया है। आरोप है कि 1990 के दशक में एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एक महिला का उन्होंने यौन उत्पीड़न किया था। ट्रंप ने इस आरोप को मनगढ़ंत कहानी करार दिया है। स्तंभकार जीन कैरोल ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क मैगजीन में अपनी आपबीती लिखकर ये आरोप लगाए थे। हालांकि ट्रंप का कहना है कि वो कैरोल से कभी नहीं मिले। उन्होंने कहा कि ये आरोप लगाने के पीछे अपनी नई किताब बेचने की उनकी मंशा हो सकती है। इससे पहले दर्जनों महिलाएं ट्रंप के खिलाफ यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगा चुकी हैं, जबकि ट्रंप ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिचेल बैचलेट ने वेनेजुएला की सरकार से सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की अपील की है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से बातचीत के बाद मिचेल ने कहा कि उन्हें काराकास में एक स्थायी मानवाधिकार कार्यालय बनाने की अनुमति मिल गई है। उन्होंने विपक्षी नेता जुआन गुआडो से भी मुलाकात की है। मिचेल का कहना है कि मौजूदा संकट का समाधान अकेले वेनेजुएला की सरकार नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा, मौजूदा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट के दौर में मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील करती हूं कि वो वेनेजुएला के लोगों की परेशानियों और चुनौतियों का हल निकालें। ये संकट तभी हल हो सकता है जबकि समाज के सभी तबके इसमें खुलकर भागीदारी करें। ये थे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्चायुक्त मिचेल बैचलेट के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। हांगकांग पुलिस ने कहा है कि शुक्रवार को उसके मुख्यालय को घेरने वाले प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शनकारी बीते दिनों हुए प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार कर दिया है। हांगकांग की न्याय मंत्री टेरेजा चेंग यिकुहाओ ने पुलिसिया बर्बरता की जाँच किए जाने की मांग को भी खारिज कर दिया है। सरकार ने प्रत्यर्पण बिल के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों पर मुकदमा चलाने की भी बात कही है। असल में नए कानून के अनुसार संदिग्धों और अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए उन्हें चीन भेजा जा सकता है। क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला साउथहैम्पटन में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 50 ओवरों में 8 विकेट पर 224 रन बनाए। अफगानिस्तान टीम के सामने 225 रन बनाने का लक्ष्य है। विश्व कप में ये भारत का 5वां मैच है। अभी तक अपने उम्दा प्रदर्शन से भारतीय टीम कोई भी मैच नहीं हारी है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल,
बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में, मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम का विषय आप जानते हैं, नोट कीजिए, हमारे टोल फ्री नंबर्स 1811-7000 और 1811-7001। बीबीसी इंडिया बोल में आज चर्चा का विषय निकल कर आया है बिहार से, जहां देखते ही देखते 150 से ज़्यादा बच्चों ने दम तोड़ दिया।
रात को खाना खिलाए हैं, रोटी बनाए हैं, वही खाई है या खा के सो गई। ओकरा बाद में कुछ भी नहीं था, उसको बड़ बुखार कुछ नहीं था। तो फिर बाद में अपने उठ के वही बिस्तर पर बैठ के एकदम ठेहुनिया लगा के हाथ गोड़ खूब कपा रहा था। अब उसको बाद में दादी का हुआ कि गर्दन में सब लूज हो गया, तो वहाँ से हम लेके यहाँ आए। जैसे हम लेके आए हैं ना वैसा ही था, उससे कम बेस कुछ नहीं हुआ है। जैसे बेहोश है वैसा ही पड़ा रहा। कल से हम आए हैं, एक भी बच्चा सही नहीं गया है हॉस्पिटल से, सारा मर के गया है।
बिहार के मुजफ्फरपुर के श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड बीते दिनों इसी तरह की हृदय विदारक आवाज़ों से गूंज रहे थे। वहीं मौजूद थीं बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबे, जो अपनी आंखों देखी बताने के लिए इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह भी स्टूडियो में आमंत्रित है। स्वागत है आप दोनों का। अजय जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बिहार में बीते दिनों एक के बाद एक बच्चों ने जिस तरह से दम तोड़ा, 21वीं सदी के भारत में गरीबी और कुपोषण का विभत्स चेहरा जिस तरह से एक बार फिर सामने आया, इस पूरे घटनाक्रम ने स्वास्थ्य सुविधाओं की, सरकारी योजनाओं की और सरकार के दावों की एक तरह से कलई खोल के रख दी है।
सरकार ने, मुझे नहीं लगता है कि कभी ये कहा है कि उनके पास हेल्थ बहुत अच्छा है, क्योंकि हकीकत हम सब जानते हैं। असलियत तो ये है कि बिहार छोड़ दीजिए, अगर दिल्ली में इस तरह का एपिडेमिक हो जाए तो हमें नहीं लगता है कि दिल्ली में भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि उससे डील कर सकें। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पे बैकवाटर्स है, यानी वहाँ कोई सुविधा है ही नहीं। और दिल्ली जैसी जगह की अगर आप बात करिए तो वहाँ पे भी एक शोर ज़्यादा होता है जिससे लगता है कि आपने कुछ किया है। अदरवाइज़ डेंगू वगैरह में जैसे दिल्ली में होता है और जिस तरह से लोग छुपाते हैं, तो वो असलियत तो है ही, पूरे इंडिया की ये असलियत है। ये कोई बिहार उससे अकेला नहीं है। बिहार चूंकि पावर्टी स्ट्रिकन स्टेट है, जहाँ लो इकोनॉमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ हेल्थ का बहुत ख़राब है। नेबरिंग अगर आप कहिए, बगल के डिस्ट्रिक्ट्स में आप चले जाइए, यूपी में, वहाँ तब भी बेहतर है, लेकिन बिहार में स्थिति वाकई में बहुत ख़राब है।
कार्यक्रम में श्रोताओं को शामिल करने से पहले वो तस्वीर भी देख लेते हैं जो बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबे मुजफ्फरपुर से देख कर लौटी हैं। प्रियंका,
संदीप, वहाँ पर जो मैंने देखा, अगर हम शुरू अस्पताल से करें तो अस्पताल में जैसे ही आप घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, वैसे ही आपको, मतलब जो कॉर्पसेस हैं, जो लोग मर रहे हैं, उनकी जो एक स्मेल है जो मुझे सबसे ज़्यादा याद है, उसके अलावा पसीने की बदबू, फिनाइल की बदबू, पेशाब की बदबू, जो टॉयलेट्स हैं वो मतलब लैट्रिन से भरे हुए हैं, उनमें कोई सफाई नहीं है, इतनी ज़्यादा तेज़ गंध आती है कि आपको लगता है आप कहाँ आ गए हैं। मतलब पानी और हवा की व्यवस्था ठीक नहीं है, ठीक से बिजली बार बार आती है और जाती है, आईसीयू में बिजली बार बार आ रही है जा रही है, लोग तरबतर हैं, पेशेंट्स जिनके पेशेंट्स जो बहुत बीमार हैं, उनके परिजन, माता पिता जो रो रहे हैं, उनके पसीने और आंसू एक साथ बहते हैं, सब मिक्स हो जाता है, पता नहीं लगता कि क्या हालत है। इतना हॉन्टिंग और इतना भयावह माहौल है उस अस्पताल में कि आपको विश्वास, मतलब ये भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल लगता है कि ये सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल है, जो कि मुजफ्फरपुर के, जो इतने बड़े एपिडेमिक जिसकी हिस्ट्री रही है, उस जिले के सेंटर में है। उसके साथ ही एक बात जो मैं बताना चाहती हूँ, ओवर क्राउडेड है, एक ही बिस्तर पर एक बच्चा मर जाता है और वहीं पर दूसरा बच्चा है जो कि जिंदा लेटा हुआ है, जिसके माँ बाप, उनका दिल में धुकधुकी हो रही है कि कब इसकी आखिरी सांस निकलेगी। तो वो उनके पेरेंट्स की साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ता होगा कि आधी ही दूरी पर उसी बिस्तर पर दूसरा बच्चा मर गया है और उनके माँ बाप विलाप किए जा रहे हैं, ऐसा मार्मिक क्रंदन कर रहे हैं कि आपका दिल फट जाए। तो वो चीज़ जो है उनकी साइकोलॉजी पर, ओवर क्राउडेड होना एक और बहुत बड़ी बात है।
प्रियंका दुबे और अजय सिंह के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले शीशे के उस पार बैठे स्टूडियो मैनेजर शाकिर आलम इशारा कर रहे हैं कि श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल किया जाए, लगातार फोन बज रहे हैं। आइए देखते हैं आज बीबीसी इंडिया बोल के पहले कॉलर कौन है हमारे साथ। हेलो,
हेलो,
अपना परिचय दीजिए।
जी, मेरा नाम आकाश मेहता है, मैं दिल्ली NCR में रहता हूँ।
जी मेहता साहब, बहुत स्वागत है आपका।
जी जी, धन्यवाद सर। तो सर, मेरा जो सवाल है वो ये है कि जो ये बीमारी है, चमकी जो बुखार है, या मैं सिर्फ चमकी बुखार की बात नहीं करूंगा, बाकी जो अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं या जो दूसरी बीमारियां हैं या कुपोषण है, जिसमें भारत नंबर 1 है और हम 70 सालों से इतनी तरक्की की बात करते आ रहे हैं, तो क्या हमारे पास अब भी वो सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं है जिसके बारे में हम बात करते हुए आते हैं? क्योंकि स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए तो हमारा भारत बहुत पीछे है। हम चाहे कितनी भी अपनी छाती पीट लें कि हम नंबर 1 बनते जा रहे हैं, विकास करते जा रहे हैं, तो स्वास्थ्य के मामले में हम बहुत नीचे हैं। तो इसकी असली वजह क्या सिर्फ सरकार है या फिर लोग भी हैं? क्योंकि जब चुनाव आता है तो लोग सरकार से इस चीज की डिमांड ही नहीं रखते या इस चीज के बारे में बात ही नहीं करते कि हमें अच्छी सुविधाएं चाहिए। क्यों बिहार में इतने सालों से एक 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 एम्स हॉस्पिटल नहीं बना हुआ है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एम्स हॉस्पिटल बन के सबको ठीक हो जाएगा, पर स्वास्थ्य सुविधा तो बेहतर मिल सकती है। तो इसका रीजन क्या है? क्या सिर्फ सरकारी रीजन है या लोग भी हैं? कि लोग जागरूक ही नहीं है कि हमें चुनाव के दौरान या हमें जो हमें सरकार से मांगना क्या है, हमें उनकी हमें अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करनी है कि नहीं करनी है?
आकाश मेहता दिल्ली से हमारे पहले श्रोता थे, एक और श्रोता को कार्यक्रम में शामिल करते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
सर नमस्कार।
जी नमस्ते, अपना परिचय दीजिए।
सर आशुतोष कुमार, म्यांमार सीमा से। कोई संवेदनहीन सरकार सुशासन बाबू कैसे हो सकता है? बिहार में बच्चों की मौत, 70 सालों की व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। जेपी आंदोलन के बाद से जाति धर्म में बटकर सालों से लोग सत्ता सुख में शामिल रहे हैं। वैसे सारी पार्टियों के लोग एक ही विचारधारा से हैं, सिर्फ सुख के लिए पार्टियां अलग अलग है। बिहार जाति संकीर्णता के वजह से मास लीडर देने में अक्षम है। सर
आशुतोष कुमार हमारे दूसरे श्रोता, और उससे पहले आकाश मेहता, बड़ी अच्छी बात उठाई उन्होंने। और हम आंकड़ों पे भी नज़र डालें तो ये पहला मौका नहीं है जब मुजफ्फरपुर में इतनी बड़ी संख्या में बच्चे मारे गए हैं। इससे पहले साल 2014 में और उससे बहुत पहले साल 1991 में भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर हो या पश्चिम बंगाल का मालदा, कुछ वर्ष पहले यहाँ भी इस तरह के मामले आए जब बच्चों ने इसी तरह बेबसी में, लाचारी में दम तोड़ा। और बच्चों की मौत का ये सिलसिला कई वर्षों के बाद भी थमा नहीं है। तो क्या अजय जी, ये इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि सरकारें सोती रहीं और अजय मान लीजिए जाग भी गई हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारों की नींद अभी ठीक से खुली ही नहीं, उन्होंने समझा ही नहीं है कि ये कितना बड़ा क्षेत्र है स्वास्थ्य का, सुधार के लिए इसमें अभी कितना कुछ करना बाकी है?
नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि सरकारें ऐसा नहीं है कि वो जानती नहीं है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। और जैसा आप खुद कह रहे हैं कि 90s से ये शुरू हुआ, आज के दिन स्थिति ये है कि इतने इंक्वायरी के बाद या इतने बार बार ये इस तरह के इंसिडेंट होने के बाद भी अभी भी नहीं मालूम है कि ये हो क्यों रहा है। लीची से जो इसका लिंक जोड़ा जा रहा है वो हमें बहुत ज़्यादा सही नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो भी इन्होंने जैसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को इकट्ठा करके और उसमें एक टॉक्सिन देख के, वो MCPG करके कोई टॉक्सिन है, वो टॉक्सिन देख के निकाला है। लेकिन अगर उनके रिपोर्ट में भी पढ़िए आप, तो ये नहीं समझ में आता है कि वाकई में वो कह रहे हैं कि ये रीज़न यही है। तो अगर 20-25 साल से आप एपिडेमिक कोई हो रहा है और आप उसका प्रोटोकॉल अभी तक नहीं बन पाया है, तो इसका मतलब है कि सरकार और समाज के लेवल पे भी एक जैसे होता है कि 2 साल में एक बार घटना आएगी तो निपटेंगे, और उसके उसको लेकर रिएक्शन नहीं हुआ। अच्छा, आप देखिए, सरकार की बात करते हैं, मीडिया ने ही कब रिपोर्ट किया? जब इंसिडेंट हो जाता है तब रिपोर्ट किया। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग 2 साल पहले से ये बता रहे हों कि भाई इस साल नहीं हुआ, अगले साल हो सकता है।
हाँ, लेकिन इस बिना पे सरकार की भूमिका पर सवाल तो
नहीं। हम सरकार की भूमिका तो देखिए हर जगह है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि सरकार की भूमिका नहीं है। हम कह रहे हैं अवेयरनेस की भूमिका, यानी अगर ये इंसिडेंट ना होता तो अखबार तो नहीं जाता या टीवी के लोग नहीं जाते, और फिर हम छोड़ देते इस साल नहीं होता अगले साल होता। हमारा कहना है अवेयरनेस लेवल हमारे यहाँ उसका बहुत खराब है।
जागरूकता फैलाने के लिए सरकार का एक नेटवर्क है, आशा कार्यकर्ता है, ANM है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उस पहलू पर भी हम आएंगे। प्रियंका दुबे वहाँ से ये सब चीज़ें बहुत पैनी नज़रों से देखकर आई हैं। उससे पहले आप जिक्र कर रहे थे कि बच्चों की मौत की असल वजह पक्के तौर पर अभी भी डॉक्टर पकड़ नहीं पाए हैं। प्रियंका दुबे, आप मुजफ्फरपुर से लौटी हैं जहां डॉक्टर बच्चों का इलाज कर रहे हैं, वहां आपने क्या देखा सुना समझा जाना?
देखिए, उसको लेकर एक लेवल पे कंफ्यूजन तो है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किया जा रहा है जिस बात पे, जिस थ्योरी को डॉक्टर्स मान रहे हैं अभी, जो उनकी रिसर्च कह रही है, वो ये है कि उनका ये कहना है कि मतलब ये किसी इन्फेक्शन या वायरस से नहीं हो रही है, ये एक मेटाबॉलिकल एक चेन की वजह से ये जो सिचुएशन है, मेडिकल कंडीशन है, वो अराइज हो रही है। इस मेडिकल कंडीशन को डॉक्टर्स एक्यूट हाइपोग्लाइसेमिक इंसेफेलोपैथी कहते हैं, जो AES का, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का ही एक प्रकार है। अब इसमें क्या होता है कि लंबे वक्त तक जो कुपोषित रहा है बच्चा, उसके शरीर में रिजर्व जो ग्लाइकोजन है, यानी ग्लूकोज जो उसके लिवर में रिजर्व है, उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसीलिए क्या होता है कि जब इनका, डॉक्टर्स का कहना है कि लीची के बीज में मौजूद, जिसका जिक्र अभी अजय जी ने किया, मिथाइल प्रोपाइड ग्लाइसिन नामक जो न्यूरोटॉक्सिन है, जब वो एक्टिव होता है बच्चे के शरीर में, तो उससे ग्लूकोज की कमी की वजह से एक खास एनारोबिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है। जब लिवर में ग्लूकोज नहीं हो, बॉडी को इमिडिएटली ग्लूकोज चाहिए, तो वो फैट से ग्लूकोज बनाना स्टार्ट कर देती है। इस क्रेब साइकिल से क्या होता है कि दिमाग में ग्लूकोज की जो पहुंच है वो तुरंत कम हो जाती है। आप उसे कितना भी ग्लूकोज इंजेक्ट करें, वो पहुंचेगा ही नहीं, ब्रेन डेड हो जाता है, और इंसुलिन का इंजेक्शन है वो खत्म हो जाता है। इसकी वजह से बच्चा जो है ब्रेन डेड हो जाता है, ये डॉक्टर्स का एनालिसिस है अभी तक।
और ये बात भी सामने आई है निकलकर कि जो बच्चे पीड़ित हैं, जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उन्हें उनकी जांच करने के लिए जो ग्लूकोमीटर होता है वो भी वहाँ मुहैया नहीं होता।
जी संदीप, आपने एक बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है वो उठाई है। दरअसल हुआ ये था कि जब 2012 और उसके बाद 14 में बच्चे बड़ी संख्या में मुजफ्फरपुर में मरे इस वजह से, उसके बाद डॉक्टर्स की कमेटी बैठी, बिहार सरकार ने उनके रिकमेंडेशन पर एक SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू किया था। उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में डॉक्टर्स ने साफ कहा कि भाई गर्मी के मौसम से पहले आशा, ANM ये सब गाँव के हर घर घर में जाएंगी और वहाँ जाकर पेरेंट्स को जागरूक करें। उन्हें बताया कि भाई धूप के जो बड़े घंटे हैं, जैसे दोपहर को 11 से शाम को 4, उस बीच अपने बच्चों को बाहर ना निकलने दें, लीची खाने से उन्हें रोकें, रात को खाना खा के सुलाएं ताकि उनका ग्लूकोज लेवल बना रहे, पोषण पे ध्यान दें। लेकिन हुआ ये, और उसके साथ में ये भी कहा कि आपके हर गाँव के पास में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें एक डॉक्टर और एक ग्लूकोमीटर होना चाहिए, ठीक, ताकि जैसे ही किसी बच्चे का ग्लूकोज लेवल कम होता है, उसको वहीं से अगर इंजेक्ट करके आप आगे ले जाएंगे जिला अस्पताल की तरफ, तो उसके रिवाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने ग्राउंड पे देखा, जिन गांवों में दो दो या चार चार बच्चों की मौत हुई है, उनमें जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, मैंने खुद देखा, वो पिछले 15 साल से एक गांव में तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था जो खुला ही नहीं था, मतलब उस पर लॉक लगा हुआ है, तो डिसफंक्शनल है सिस्टम, कोलैप्स करा हुआ है एकदम।
प्रियंका दुबे, आप हमारे साथ बने रहिए, और वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और लाइन पर कुछ श्रोता भी काफ़ी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगले श्रोता से बात करते हैं इस समय। कौन है हमारे साथ इस समय?
हाँ जी, मैं अरुण बगड़े बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से, पुसद महाराष्ट्र से।
जी बहुत स्वागत है आपका।
हाँ सर जी, मेरा कहना ऐसा है, जैसे ये जो लोग पहुँचते हैं वहाँ, वो तो बहुत गरीब तो है ही, कुपोषित भी है, लेकिन जब वो पहुँचते हैं दवाखाने में, तब उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है, इसलिए उनको इलाज नहीं मिल पाता टाइम पे। अगर वहाँ जहाँ से यहाँ ये डिजास्टर फैला है, वहीं पे डॉक्टरों लोगों ने टीम जाने को होना कि उनको वहीं घर पे उनको ट्रीटमेंट मिले, ऐसा मेरा कहना है सर जी।
बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता को कार्यक्रम में शामिल करते हैं।
मैं मोहम्मद शफी जम्मू कश्मीर से सर बोल रहा हूँ जी। नमस्ते जनाब।
जी नमस्ते
सर। बात ये है कि हम सब कुछ कह लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जितने भी हमारे लीडर हैं, जितने हमारे जो नेता लोग हैं, इनमें वो सलाहियत ही नहीं कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। जितनी योजनाएं हैं, ये सब ऊपर से बयान करते, जमीन पर एक योजना नहीं चलती, नंबर एक। नंबर दो सर, बात यह है कि पहली बात ये देख लो कि हमने जब टीवी पर देखा, जब चीफ मिनिस्टर वहां आ रहा, तो वहां पर गंदगी इतनी पड़ी है, तो इतनी गंदगी तो हमारे घरों में नहीं है जितनी उस हॉस्पिटल में है। हमारा भी हॉस्पिटल है जम्मू कश्मीर में सर, जो जम्मू में है, हम भी जाते हैं, लेकिन जो हालत उस हॉस्पिटल की देखी, तो बीमारी तो हॉस्पिटल में ही पड़ गई है, नंबर एक। नंबर दो सर, बात यह है कि सबसे कसूर हमारा है। पब्लिक का कसूर ये है कि जब हम वोट डालते हैं तो हम किसी चीज को नहीं देखते, हम उन लोगों को लाकर खड़ा कर देते हैं जिन लोगों को शुद्ध बुद्धि नहीं है कि कैसी दुनिया चलानी है, कैसे गवर्नमेंट चलानी है। इस वक्त जब हमने वोट डाला तो आप देखिए कितना वोट जो है हिजबे इख्तलाफ जो जो होती है उसको एक वोट नहीं पड़ा, एक सीट नहीं पड़ी, सारी वोट जो है नीतीश सरकार को पड़ गई। तो आप बताइए हिजबे इख्तलाफ के लोग हैं ही नहीं, आवाज कौन उठाएगा।
मोहम्मद शफी साहब जम्मू से बहुत शुक्रिया आपका। मैं अजय जी जैसा कि एक हमारे श्रोता कह रहे थे और इनसे मिलती जुलती ही बात मैं अब ला रहा था आपके सामने कि अभी एक डेढ़ महीने पहले ही लोकसभा के चुनाव हुए थे। आपको ध्यान आता है कि किसी पार्टी ने, किसी बड़े नेता ने गरीबी, कुपोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी ऐसे मुद्दों पर वोट मांगे हों या एजेंडे में इसको प्रमुख तौर प्रमुखता से शामिल किया हो, ये मुद्दे कमोबेश नदारद रहते हैं।
बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स अमूमन इलेक्शन का होता है उसमें ये जो बहुत एसेंशियल इश्यूज हैं उसको लोग रखते नहीं हैं और ना ही उस पर वोट पड़ता है। और अगर हकीकत तो ये है कि अगर आप बिहार या कहीं पे भी चले जाएं वहाँ पे ये इश्यूज गौड़ हो जाते हैं, बाकी इश्यूज कास्ट और जाने कौन कौन से इश्यूज आ जाते हैं। हमारा कहना यही है कि आज तक अगर आप ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि ये डिजीज़ आ कहाँ से रही है, यानी लीची वाली बात भी जो है वो एजम्पशन है, वो ये नहीं है कि आप साइंटिफिकली उसको प्रूवन फैक्ट है कि आप लीची से ही ये होता है, क्योंकि 4 महीने का बच्चा अगर मर रहा है तो वो लीची खा के नहीं मर रहा है। अभी आपके इसमें हमने एक माँ को आवाज़ देते सुना जिसमें वो कह रही है कि रात में खाना खा के सोई थी, तो यानी इसका मतलब रात को खाना भी बच्चे खा के सो रहे हैं। हमारा कहना ये है कि अगर 20-25 साल या 30 साल से एक घटना हो रही है तो आखिर क्या वजह है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, वो क्यों नहीं उसका साइंटिफिकली वो करता है कि भाई पता तो करें कि आखिर है क्या, ये वायरस है, बैक्टीरियल है या है क्या। आज तक इसका खोज ही नहीं हुआ और आज के दिन हम उसी स्थिति में हैं। आज देखिए इतना आउटरेज है इस समय, ये आउटरेज 1 साल बाद फिर होगा, अगर 1 साल या अगले साल अगर नहीं होता है उसके अगले साल होगा तो फिर आउटरेज होगा। ये जो अप्रोच है ना, ये कहीं रुकना चाहिए।
प्रियंका दुबे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रियंका, आप गोरखपुर भी गई थी जब वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से बड़ी संख्या में बच्चे मारे गए थे, कुछ समानता पाती हैं आप मुजफ्फरपुर में जिस तरह से बदहाली में बच्चों को दम तोड़ना पड़ा और जो गोरखपुर की घटना हुई थी?
देखिए आपने बहुत ही वैलिड और ज़रूरी सवाल पूछा है। गोरखपुर का भी इतिहास रहा है बिल्कुल मुजफ्फरपुर की ही तरह, मतलब यहाँ पे बच्चों की जो मरने की का जो सिलसिला है दोनों ही शहरों में लगातार लंबे वक्त से जारी है। लेकिन गोरखपुर को पिछली बार जब ये हादसा हुआ था, ऑक्सीजन कांड जब हुआ था, उस बाद इतना ज़्यादा वहाँ पर नेशनल अटेंशन रहा मीडिया का और वहाँ पर स्थिति कमोबेश मुजफ्फरपुर से इसलिए बेहतर है। वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है, इसका मतलब है कि जब AIS से जुड़े जितने मामले होते हैं उसमें अगर आपको पुख्ता तौर पर ये कंफर्म करना होता है कि भाई जापानीज इंसेफेलाइटिस है या फिर ये जो एक्यूट हाइपोग्लाइसेमिक इंसेफेलोपैथी ये है या AIS का और कोई दूसरा स्ट्रेन है, स्क्रब टाइफस है, उसके लिए आपको सेरेब्रल फ्लूइड है जो पेशेंट का उसको निकाल कर स्पाइनल कॉर्ड से जाँच के लिए भेजना पड़ता है। इसके लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है जो कि गोरखपुर में मौजूद है क्योंकि वहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, जबकि मुजफ्फरपुर में ये चीज़ें नहीं हैं। उसके अलावा वहाँ पर मुजफ्फरपुर में स्पेशलाइज्ड जो वार्ड्स हैं इंसेफेलाइटिस पेशेंट्स के लिए वो भी नहीं है, जो हड्डी के मरीजों का वार्ड है ICU का और दिल के मरीजों का वार्ड है वहां से निकाल के मरीजों को वहां बच्चों को रखा जा रहा है। इंसेफेलाइटिस का कोई वार्ड नहीं है, इसके वादे इस बार किए गए, पिछली बार भी किए गए थे, अब वो अस्पताल कब तक बनते हैं ये देखने वाली बात है।
अजय जी, आपको ध्यान आता है कि कभी ऐसा हुआ कि किसी स्वास्थ्य मंत्री को किसी महामारी की वजह से या इस तरह की घटनाओं की वजह से जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे मारे गए हों इस्तीफा देना पड़ा हो, इस्तीफे की पेशकश की गई हो जो जिम्मेदारी लेते हुए, कभी ध्यान आता है आपको ऐसा?
नहीं, ट्रेन एक्सीडेंट में ध्यान आता है, सिविल एविएशन में ध्यान आता है, लेकिन हेल्थ हमारे यहाँ कुछ ऐसा इशू है जिसको लेके आम लोग भी ध्यान नहीं रखते हैं। अगर जैसे बहुत सारे घटनाएं आपने सुनी हो, प्लेग हुआ, हाँ प्लेग भी होता है और आउटब्रेक कितने सारे होते हैं, आए दिन होता है। दिल्ली में डेंगू का टाइम आ गया है तो तो यहाँ होता है, फिर यहाँ पे भी वही अटेम्प्ट होता है कि डेंगू आप ना बताइए, कुछ और बताइए। कुल मिला के स्थिति ये है कि इंडिविजुअल हेल्थ को लेके हम लोग सामाजिक रूप से कितने इनसेंसिटिव हैं कि हमारे यहाँ आंकड़े होते हैं, 100 मर गए, 150 मर गए, 200 मर गए, और फिर अगले साल फिर भूल जाते हैं। तो ये हकीकत है और इस पर कोई पॉलिटिकल लीडरशिप भी ओनस नहीं लेती है और हम मांगते भी नहीं हैं। हम ये भी नहीं कहते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर इस पर इस्तीफा दे। तो ये एक हकीकत है जो कि शायद हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए।
आप कुछ कह रही हैं प्रियंका?
जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं इस घटना के बाद से कोई ऐसा मंत्री नहीं, भले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हों, राज्य स्वास्थ्य मंत्री हों बिहार के, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिसने मुजफ्फरपुर का दौरा ना किया हो, लेकिन आपने जब भी सवाल पूछे, मैंने जब भी वहाँ सवाल पूछे पानी की बुनियादी सुविधाओं को लेकर और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी में जो कमी उसको लेकर, तो हर चीज़ में गोलमोल घुमा घुमा के बस फ्यूचर के जवाब दिए गए कि हम अभी वार्ड्स बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बाद में एक स्पेशल 4 लाख का मुआवजा देंगे, सारी चीजें करेंगे। लेकिन माँ बाप जो थे, उन्होंने मुझसे कहा कि उनके बच्चों की जान का कोई मोल नहीं है, 4 लाख रुपए उनके बच्चे वापस नहीं ला सकते। कोई जिम्मेदारी लेकर तात्कालिक क्या काम कर रहे हैं उस पर तात्कालिक जवाब देने को तैयार नहीं है।
ये कहा जा रहा है कि, और जो देखा भी गया है कि ज्यादातर जो बच्चे मारे गए हैं वो गरीब परिवारों से, बेहद गरीब परिवारों से हैं। तो और ये भी माना गया है कि कुपोषण एक बड़ी वजह रही है इस बीमारी की चपेट में आने की। और पिछले साल का ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें पिछले साल का, तो वो बताता है कि 119 देशों की सूची में भारत 103वें स्थान पर है, और जबकि श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देश भारत से इस मामले में ऊपर हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है, और हर साल तमाम राज्य दावा करते हैं कि हमने बम्पर रिकॉर्ड कृषि उत्पादन किया है, फिर भी इतने सालों के बाद, तमाम दावों के बावजूद, भुखमरी, कुपोषण जो सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, ये समस्या खत्म नहीं होती है। इसकी क्या वजह मानी जाए?
नहीं, सिंपल है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे यहाँ, वो जो टारगेट सेक्शन है, जो BPL का लेवल है, उसके पास तक इफेक्टिवली नहीं पहुँचता है। कुपोषण को लेके कुछ हमारी फूड हैबिट्स भी हैं, वो भी जिम्मेदार हैं, लेकिन असलियत ये है कि एक बड़ा सेक्शन है इंडिया का, जो बहुत बड़ा सेक्शन है क्योंकि इंडिया में जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, उसके पास खाने को अनाज ज़्यादा होने के बाद भी नहीं है। तो ये हकीकत है जिसको कि आप देखते होंगे अक्षय पात्र या इस तरह की स्कीम्स जो हैं, उससे ये चाहते हैं कि बच्चों में ये इसको दिया जाए, लेकिन इफ़ेक्टिवली वो नहीं हो पा रहा है, ये रियलिटी है। और हंगर इंडेक्स में जैसा आपने बताया, वो आज का नहीं है, वो पिछले अगर 20 साल से आप देखें तो उसी तरह का इंडेक्स आता जा रहा है, और आज तक जो छोटे देश हैं उन्होंने उसको एड्रेस कर लिया, हम नहीं कर पा रहे हैं।
मैं इसी सवाल पर आ रहा था कि क्या वजह है कि भारत के मुकाबले जो छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वो भी सुधार करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में स्थिति सुधर नहीं रही है। जिम्मेदारी तो तय करनी होगी ना।
नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो लेकिन उसका वो जब तक एक राजनीतिक एटमॉस्फियर उस तरह का नहीं बनेगा, और जिस तरह से लोग उसको सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, तब तक वो स्थिति अच्छी आएगी नहीं। धीमे धीमे लोग हो रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हम उसमें बिलीव नहीं करते हैं कि इनसेंसिटिव सिस्टम को हम हमेशा कहते रहें, क्योंकि और भी लोग इनसेंसिटिव हैं, ये सिस्टम कोई उसका पार्ट है। तो इनसेंसिटिविटी जितनी है उतनी है, लेकिन उसके साथ साथ अप्रोच भी लोग कर रहे हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं।
लेकिन सरकारों की भी जिम्मेदारी तय करने की ज़रूरत है, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, कोई सरकार इस मामले में जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। मैं इसी बात के साथ इंडिया बोल को अब विराम देना चाहूँगा। भारत में कुछ ही देर में बजने वाले हैं 8:00, वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह और BBC संवाददाता प्रियंका दुबे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया दुनिया भर में हमें सुन रहे तमाम श्रोताओं का। आज जिन श्रोताओं को हम चाहकर भी कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सके, उनसे माफ़ी चाहूँगा। अगले हफ्ते 7 दिन के बाद, अगले शनिवार, फिर एक ज्वलंत विषय के साथ हम हाजिर होंगे इंडिया बोल लेकर। तब तक कीजिए थोड़ा इंतज़ार, और फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाज़त, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए BBC हमेशा आपके साथ है। शुभरात्रि।